नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में सारण जिले के निवासी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज हुए शहीद। मौसम विभाग ने सारण, सीवान, गोपालगंज, जमुई सहित कई जिलों में आज लू की चेतावनी जारी की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार सेपक टाकरा के मुकाबलों में 7 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। अब समाचार विस्तार से। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बनी संघर्ष विराम सहमति का बार बार उल्लंघन हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिसरी ने कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का समुचित और उचित जवाब दे रहे हैं तथा भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे।
विदेश सचिव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कल शाम भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्थिति ठीक से समझनी चाहिए तथा इस घुसपैठ को रोकने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले के आरएसपुरा सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हो गए। वे सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया है कि उन्हें अलर्ट रहने और सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्रों में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बावजूद नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने प्रदेश में सुरक्षा तैयारियों को मजबूत बनाए रखने का निर्देश दिया है। डीजी सह नागरिक सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर परेश सक्सेना ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान आई खामियों में सुधार करते हुए नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इन खामियों को दूर किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। यह दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान और 6th वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें दिन भी बिहार के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। बिहार कल 2 और स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही सेपक टाकरा में ओवरऑल चैंपियन रहा। इस स्पर्धा में बिहार ने 1 स्वर्ण, 5 रजत सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इसके साथ ही बिहार की टीम पदक तालिका में 14वें स्थान पर आ गई है। इधर महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। 74 पदक जीतकर महाराष्ट्र मेडल टैली में पहले स्थान पर बना हुआ है। 39 पदकों के साथ कर्नाटक दूसरे, जबकि 23 पदकों के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। आज प्रतियोगिता के 8वें दिन बास्केटबॉल, टेनिस, कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी समेत विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कई मेडल दांव पर होंगे। प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान बढ़ने से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कई स्थानों पर उष्ण लहर, लू चलने की संभावना है।
दिनांक 11 मई को राज्य के गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, जमुई एवं बांका जिलों में लू चलने की संभावना है, जबकि राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं सिवान, सारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा जिलों में गर्म और शुष्क दिन रहने की संभावना है।
निर्वाचन आयोग ने विभिन्न दलों के बूथ स्तरीय एजेंट BLA का प्रशिक्षण कल से शुरू कर दिया है। पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीतिक शोध संस्थान के सभागार में 26 मई तक प्रतिदिन ये प्रशिक्षण कार्य चलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जातीय सम्मेलन करेगी। उन्होंने प्रदेश मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जातीय सम्मेलन की शुरुआत 15 मई से होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि जातीय सम्मेलन की जिम्मेवारी क्षेत्र विशेष के स्थानीय नेताओं को दी जाएगी। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और खगड़िया जिला के प्रवक्ता के पूर्व विधायक रामानंद सिंह का पटना में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के उल्लंघन को तरजीह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, भारतीय सशस्त्र बलों ने मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में सारण जिले के निवासी BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज हुए शहीद। मौसम विभाग ने सारण, सिवान, गोपालगंज, जमुई सहित कई जिलों में आज लू की चेतावनी जारी की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार सेपक टाकरा के मुकाबलों में 7 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।